ओम शांति। जब बड़ा संगठन होता है तो कितना अच्छा लगता है। वैसे तो कहा जाए मधुबन है ही बेहद बाप के बेहद का घर, और जहां बेहद का बाप है वहां तो बेहद का परिवार रहता ही है। तो मधुबन है बाबा का बेहद का घर, अर्थात बेहद परिवार का स्थान, और उसमें भी समय समय पर जब सभी सेंटर्स से आप सब यहाँ आते हैं तो मधुबन बड़ा शोभनीय हो जाता है। सब तरफ के भाई बहने, अर्थात प्रैक्टिकल में आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि बरोबर यह ईश्वरी परिवार, ईश्वर जो बेहद का बाप है उनका ये बेहद का परिवार। परिवार के अंदर जितनी भी भारत के अंदर वैरायटी है उन सब से मिलने का मौका मिलता है। कल की मुरली याद है? कल संडे था, अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स की मुरली थी, और उसमें बाबा ने कितना खुशी खुशी से बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ा दिया। याद है कौन सा खुशी का पारा? सबसे खुशी की बात कौन सी बताई बाबा ने? एक उठ करके बड़ी आवाज से बोलेंगे तो क्लियर आवाज पहुंचेगा। चलो फिर भी याद है, अर्थात वह खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। बाबा तो हम बच्चों को खुशियों से भरपूर करते रहते हैं, और कल तो बाबा ने कितना बच्चों को अपने से भी ऊंचा कह दिया है? फिर हम बच्चे समझते हैं ना कि हम ऐसे हैं, बाप को खुशी है कि हम अपने इतने सर्व बच्चों से कितने समय के बाद आकर के मिला हूँ। हम बच्चों को तो खुशी है ही कि हम बाप से आकर के कलप के बाद मिले हैं। तो बाबा भी कहते हैं देखो शिव जयंती अवतरण, तुम बच्चों का भी अवतरण, तो यह याद रहे कि हमारा ये ब्राह्मण जन्म, अर्थात हम आत्माएं अभी बाप की नई रचना है, और नई रचना अर्थात अपने परम धाम घर से अब आई हुई है, पधारी हुई है सृष्टि मंच पर। जब ये नशा चढ़ जाएगा तो और सब बातें अपने आप, छोटी मोटी बातें खत्म हो जाएंगी। मेहनत करनी पड़ती है पुराने संस्कारों से मुक्त होने के लिए, लेकिन ये बात अगर पक्की हो जाए कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ, जब मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ तो अवतरित होंगे परम धाम से, अपने घर से पहली पहली इधर आई हूँ। जब पहला पहला मेरा इधर सृष्टि पर आना है तब हमारा कौन सा स्वरूप है? आज की मुरली में भी ये बात थी, जब हम पहले पहले सृष्टि पर आते हैं तब हमारा इस सृष्टि पर कौन सा स्वरूप है? बाप हमें वही बना रहे हैं कि जो हमारा पहला आदि देवता स्वरूप है, अब फिर से हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे यह शुद्ध चिंतन सदा आपके मन में चलता रहे। शुभ चिंतक सर्व के प्रति, शुभ चिंतन स्वयं के अंदर, क्योंकि कहा जाता है मन संकल्प के सिवाय रह नहीं सकता है। तो मन को जो खजाना चाहिए, मन के अंदर जो चिंतन चलना चाहिए, और उसके लिए बाबा की हम बच्चों को कितनी मदद, जो रोज रोज हमें आकर के पढ़ाते हैं, और पढ़ाई में रोज रोज ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं जो हम अगर अपने मन के अंदर याद रखें, बार बार स्मरण करते रहें, तो हमारे संकल्पों में शुद्धि आ जाए, अर्थात मन शुद्ध हो जाए। क्योंकि अनेक जन्मों से अनेक बंधनों में होने के कारण वे अनेक प्रकार की बातें जो भर गई है, उससे मुक्त होने की सहज विधि है अब जो हमें नया ज्ञान मिल रहा है, अब जो हमें बाप से शुद्ध और श्रेष्ठ बातें मिल रही है, इतनी ऊंचे ते ऊंची नॉलेज, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना, भले ये नॉलेज हमको टोटल है, सृष्टि की आद क्या थी, मध्य में कौन रहे और अंत में कौन है, फिर अंत से आद कैसे होती है, ये है सबसे वंडरफुल बात। आज की मुरली में था ना, कैसे पुरानी दुनिया को बदलते हैं आके बाप, ये है गुप्त बात। क्यों गुप्त है? क्योंकि बाप ही हमारा गुप्त रीति से आते हैं, और वो हमें नया ज्ञान गुप्त गुप्त रीति से नया नया ज्ञान आके सुनाते हैं, अर्थात नई नॉलेज जो किसके पास नहीं है। केवल इतनी ही बातें हम स्मृति में रखें कि भगवान आकर के हमें सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का राज जो कोई नहीं जानता है, वो बाप हमें बताते हैं। इतनी बात याद रहे तो देखो कितना खुशी का पारा, साथ साथ वो नशा। हम कौन, किसके बच्चे और क्या पढ़ रहे हैं? जैसे लौकिक में कोई ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, ऊंचे स्टैंडर्ड में आते हैं, तो उसको होता है ना, अब हम ये स्टैंडर्ड पास करके ये स्टेटस लेंगे, तो उस स्टैंडर्ड पढ़ाई का भी नशा, और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का नशा इसलिए है कि इस पढ़ाई में पास होकर के हम ऐसा ऊंचा पद पाएंगे। तो भविष्य पद की भी स्मृति उन्हें इतने नशे में और खुशी में रखती है। इसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, बच्चे ये नॉलेज कितनी ऊंची है, और नॉलेज को अगर हम स्मरण करें, स्वदर्शन चक्र बाबा कहते हैं, घुमाते रहो घुमाते रहो, ये आपके बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। अब जब हमारे बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र, अर्थात 5000 वर्षों की बातें, बल्कि मैं आत्मा क्या थी, सृष्टि मंच पर कैसे आई, और यहाँ क्या क्या के पाठ बजाया, अब किस स्टेज पर हूँ, अपने को आदि से लेकर के अंत तक, ऐसी जानकारी जिससे हम अपने आप को इतना जान सकते, 84 जन्मों की अपनी कहानी पहचान लेते हैं, ऐसी नॉलेज जब हमारे बुद्धि में है और बुद्धि के अंदर होने के कारण मन के अंदर वही शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार, वही ऊंची नॉलेज, कहा जाता है जैसे विचार होते हैं वैसा ही अपना चेहरा बनता है, जैसा चिंतन वैसा चेहरा, अथवा जैसे चिंतन का नशा होगा वैसी हमारी चलन होंगी। बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं कि हमारी चलन और चेहरा ऐसा हो जो हमें देखे उनसे वो उनों को आकर्षण आए कि ये किसके बच्चे हैं, ये बड़े महान लगते हैं। लेकिन वो महानता हमारे चेहरे से नजर आए जब हमारे अंदर ऐसे महान चिंतन चलता रहेगा। उसके लिए बाबा ने हमें यह रोज की पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते हैं उसको चिंतन करते रहें, अर्थात सारा दिन भले कर्म इंद्रियों से हम काम करते हैं, जैसे आँखों का काम देखना, मुख का काम बोलना, कानों का काम सुनना, हाथ पांव अपने अपने अनुकूलता अनुसार काम करते ही है, तो हर कर्म इंद्री जो उसका कर्म निश्चित है जिस प्रकार का, वो अपना कर्म करती रहती है। इसी प्रकार कभी ये सोचा है कि मन का आखिर काम क्या है? कहेंगे मन का काम है विचार करना, पर क्या विचार करना? तो मन का काम बाबा ने बताया है, बच्चे हाथों से अथवा कर्म इंद्रियों से कोई भी काम करो, क्योंकि कर्म इंद्रियों का है ही निश्चित कर्म करना, और मन के लिए निश्चित है कि संकल्प करना, कौन सा? जो हमें बाप की आज्ञा है। अभी हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, इसलिए हमें ये याद रहना चाहिए, हमें बाप की आज्ञा है, बच्चे हर कर्म करते माम एकम याद करो, और माँ में कम हमें याद रहे उसकी विधि है कि जो बाबा नॉलेज हमको विस्तार से सुनाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, उन्हीं बातों को, उसी विस्तार को हम बार बार अपने अंदर चिंतन करते रहे। एक है ना गीत हमारा जो हम औरों को समझाते हैं कि अब अपनी चिंतन की धारा बदल दो। जब भी अपने को कोई पुरानी बातों की याद आए तो याद करे अब तो हमें अपने चिंतन की धारा बदल देनी है, बल्कि अपने पर ये अधिकार रखो कि हमने अपने चिंतन की धारा बदल दी है। क्या बदल दी है? क्योंकि अभी हमारा जीवन ही बदल गया ना, हम अभी सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बच्चों का फर्ज है बाप की आज्ञा को पालन करना, बच्चे का फर्ज है बाप के शिक्षा अनुसार अपना कदम उठाना। तो जो बाप की शिक्षा है उसको जब हम बार बार चिंतन में लाएंगे तब तो हम उसके अनुकूल अपना कदम उठाएंगे, तब तो हमारे मन के अंदर वो यादें भरी रहेंगी, स्मृति रहेंगी, और उसी स्मृति के आधार पर हम जो भी कर्म करेंगे उन कर्मों में भी वह स्मृति हमारे से कर्म श्रेष्ठ कराएंगी। श्रेष्ठ संकल्पों से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। अर्थात जब हमारी विचारधारा शुद्ध है, संकल्प श्रेष्ठ है, समर्थ माना शक्तिशाली, हिम्मत देने वाला, जब हमारे संकल्प हिम्मत देने वाला है, शक्तिशाली है, तो जरूर है हमारे कर्म उन्हीं संकल्पों के आधार पर चलेंगे। वह कर्म कौन से, उसके लिए भी बाप की श्रीमत है, बच्चे सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो। अभी देखो 18 जनवरी, ये जनवरी मास हम कहते हैं ना, ये बाप की स्मृतियाँ। अब जैसे हमारे को सहज क्या 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 हम स्मृति में रखें बाप के, तो सहज रीति से दादी ने अभी 10 कदमों के अंदर बाबा की साकार, बाबा की विशेषताएं, और उन विशेषताओं में अभी का 3रा कदम याद है, सुना है नहीं सुना है, यहाँ शायद नहीं सुनाया गया। वैसे हर रोज आप सेंटर्स पर तो शुरू किया होगा, हर कदम की एक एक पॉइंट रोज क्लास में सुनाई जाती है। तो आज का 3रा कदम है, अभी डेट्स के अनुसार उसकी आज 2री पॉइंट होंगी, पर 3रा कदम है सर्व के प्रति शुभ चिंतक, शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रखना। यही बात हम अपने में पक्की करें तो जो हमको किससे भी कोई बात न पसंद आती है, कल की मुरली में या उससे आगे की मुरली में था ना, किसका भी बच्चे अवगुण वर्णन नहीं करो। वर्णन करना मुख का काम, ये कर्म हो गया। अगर अवगुण वर्णन करते हैं तो ये हमारा कौन सा कर्म हो गया, ये हमारे विकर्म का खाता बना। और बड़ी बात, हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं रही, दृष्टि में अवगुण ढूंढना, अवगुण को देखा दृष्टि ने, तो दृष्टि शुद्ध कैसे बनेगी। और वह दृष्टि जिसके अंदर रूहानियत भरी हुई हो, रूहानी स्नेह भरा हुआ हो, हम कहते हैं हम है ईश्वर की संतान, ईश्वर को सर्व मनुष्य आत्माएं याद करती है। क्यों? दुख हरता सुख करता, बाप ईश्वर कहो, भगवान कहो, सर्वशक्तिवान बाप, जब हमारा सर्वशक्तिवान बाप है। बाबा की ही बातें सुन रहे थे तो याद में रहना तो बड़ा सहज था, फिर भी प्रकृति का प्रभाव वो अपने पर गालिब होता है या हम प्रकृति जीत बने हुए हैं। देख लिया हर एक ने अपने आप को। बात चल रही थी अभी कौन सी बोलो? बात चल रही थी वर्तमान समय, विशेष इस जनवरी मास के अंदर हमें बाप समान बनने की सहज विधि दी गई है कि बाप के हर कदम को फॉलो करो। उसमें यह बात आती है कि बाप की साकार में शिव बाबा निराकार ने ब्रह्मा बाबा के साकारत का आधार लेके हम बच्चों को आदि से अंत तक हर बात की नॉलेज भी दी है और हमारी जीवन कितनी श्रेष्ठ थी, फिर से कैसे ऐसी श्रेष्ठ बने, उसके लिए एक तरफ नॉलेज, दूसरे तरफ शिक्षाएं और साथ साथ कदम कदम पर बाप हमें डायरेक्शन देते जाते हैं, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब ये बात ही हम सोचें, सर्वशक्तिमान भगवान हम बच्चों को कदम कदम पर राह दिखा रहे हैं, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हमारे लिए कितनी सहज बात। हमें क्या करना है? बस बाबा ने कहा ये करो, हमें ये करना है। तो बाबा की हम बच्चों के लिए यह शिक्षा है, बच्चे सदा सर्व के प्रति शुभ भावनाएं हो। और शुभ भावना का एक बड़ा सहज विधि है, सीधा सादा मिसाल, सीधी सादी बात कौन सी कि सर्व आत्माएं जिसको भी हम देखें हमें स्मृति आए ये सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें यह स्मृति दिलाई है, इस शरीर को धारण करने वाली आत्मा है, आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्मा पिता बेहद का बाप और उनके ये बेहद के बच्चे। जब इस स्मृति से हम देखते हैं तो हमारे मन के अंदर कोई भी और संकल्प विपरीत ख्यालात जागृत हो ही नहीं सकती है। जैसे बाप की हम सब बच्चों के प्रति सदा कल्याण की भावना, बच्चों का कल्याण हो, बच्चे ऊंचे बन जाए, ये मेरे बच्चे जो देवता थे, और जब देवता थे तो सृष्टि कैसी सुखमय थी, इनों की जीवन कितनी सुखमय थी, दुख का नाम निशान नहीं था, बल्कि बीमारी नहीं थी, निरोगी काया थी। और उससे बाद कि अकाले मृत्यु कभी होता नहीं था, मृत्यु भी अपने हाथ में, जब शरीर की अधिक एज बन जाए, अभी बहुत समय से शरीर में पाठ बजाया है, अब हम चले इच्छा से जागृत अवस्था से योग बल से शरीर को त्यागना छोड़ना, ऐसी इनों की जीवन थी। फिर से मेरे बच्चे ऐसे बने, कितनी ऊंची भावना, और उस ऊंची भावनाओं को साकार में हम सचमुच ऐसे बने, उसके लिए बाबा हमें बार बार कदम कदम पर स्मृति दिलाते रहते हैं। हे आत्मा तुम्हें याद है, तुम ही तो देवता थी, तुम ही पूज्य थी। अब पुजारी बन गए, अब फिर से मैं आया हूं तुम्हें पूज्य बनाने के लिए। बस ये याद रखो मैं कौन और किसकी संतान। जब अपने प्रति ये स्मृति रहती है तो दूसरे को भी हम देखेंगे ये कौन, भगवान के बच्चे, यह वो ही शुद्ध आत्मा। अब अपना पाठ 84 का पूरा करके अभी बाप के पास आके पहुंची है, अभी फिर से यह आत्मा भी अपने को देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। ऐसे इस प्रकार से जब अपने अंदर में विचार होते हैं तो उन्हों के प्रति जिसको भी देखेंगे आपके मन के अंदर उसके प्रति स्नेह भाव जागृत होगा, और वह स्नेह भाव अपने को बहुत सरल बना देता है। जब किसके प्रति भी स्नेह भाव होता है तो बोलने में भाषा भी मधुर बन जाती है और व्यवहार में भी बड़ी सरलता आ जाती है। तो देखो शुभ भावना रखने से कितनी प्राप्ति होती है, कितना स्वयं में ऑटोमेटिकली सहज रीति परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन के लिए हमें एक एक बात को बैठ के सोचना, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, निकालनी है, निकालनी है, निकालनी है, पर याद तो कमी कोई करते हो ना। जिनकी याद होंगी वो छूटेंगी नहीं। हमें याद करना है स्मृति को, श्रेष्ठ बातों को, रूहानियत को, आत्मा के गुणों को। हमें याद करना है अपने परमात्म बाप की शिक्षाओं को। हमें याद करना है बाप की आज्ञाओं को। हमें याद करना है बाप हम बच्चों से क्या चाहते हैं। हमें ये याद रहे बाप आए हैं खास हम बच्चों के लिए, हमें फिर से देवता बनाने के लिए। और ये सारा ही परिवार, बेहद का परिवार, देवता बनने के लिए बाप से ये राज्यों की शिक्षा ले रहे हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं, ऐसे ऐसे विचार, इसको कहेंगे मन के अंदर ये शुद्ध विचार। और शुद्ध विचारों के साथ हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ भावना सर्व के प्रति भी तभी होती है जब अपने में स्मृति है मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ। बार बार हमें अपने से पूछना चाहिए, बार बार हमें अपने को याद दिलाना चाहिए। भले हम कहेंगे हम तो समझ गए, हम तो है ना बाबा के बच्चे, है बाबा के बच्चे। उसका प्रमाण कहा जाता है जैसा बाप वैसे बच्चे। तो हम अपने हर कर्म को देखें, भले शरीर निर्वाह के लिए हर एक का अलग अलग कर्म है, परंतु आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए बाप की शिक्षाएं हम सब के लिए एक जैसी है। तो आत्मा रूप से हमें बाप की शिक्षाओं को बार बार स्मृति में लाना है। आत्मा हमारी शुद्ध तब बनेगी जब बार बार हम बाप की शिक्षाओं को स्मृति में लाते रहेंगे। बार बार बाप की शिक्षाएं स्मृति में लाने से हमारे संकल्पों में स्मृति स्वरूप वे संकल्प हमारे शुद्ध और समर्थ शक्तिशाली। अपने को तथा सर्व को ऊंच बनाने के संकल्प, हिम्मतवान। ऐसे नहीं क्या करे, ये तो बहुत समय की आदत है। जब हम बाप की बातों को स्मृति में लाते हैं तो आदतों से परे हो जाते हैं, आदतें किनारे हो जाती है। क्यों? बाप सर्वशक्तिमान है, वो बाप की शक्ति हमारे में जागृत होने लगती है। तो हम आत्मा जो विस्मृति के कारण कमजोर हो गई, वह स्मृति रहने से समर्थ बन जाती है। तो अब ये जनवरी मास समर्थ, बाबा कहते हैं ना, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। ऐसी ऐसी बातें हम बार बार खुद को याद दिला करके खुद के अंदर हिम्मत को बढ़ाएं। हम ऐसे न समझे ये तो बहुत समय की बात है, बदलने में तो टाइम लगेगा। बदलने में टाइम नहीं, वैसे भी कहा जाता है भगवान जो चाहे सो कर सकता है। भले बाप कहता है मैं नहीं करता हूँ, परंतु करके दिखाता है ना। मनुष्य आसुरी स्वभाव वाला, आसुरी गुणों वाला, आसुरी गुण कोई जल्दी निकलते हैं, परंतु सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति से, चाहे वो नॉलेज के आधार द्वारा, चाहे हम जितना उसको याद करते हैं, उस याद की शक्ति से हमारे में परिवर्तन ले आते हैं। बाप की नॉलेज से ही तो हमारे में परिवर्तन आया, और बाप की हम सर्व बच्चों के प्रति शुभ भावना, ये मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंचे जाए, विश्व के मालिक थे फिर से बन जाए। अब इतने दुखी हो गए हैं, सदा सुखी बन जाए। ऐसी बाप की शुभ भावना, सर्व के प्रति कल्याण की भावना, कैसा भी आता है। चलो समझो यहाँ हम परिवार में देखते हैं, कभी कोई की बात, भाई इसमें तो ये बात बुरी बात है, ऐसे बाबा के पास आए, बाबा ने बोला ये, बाबा ने उसकी बुरी बात नहीं देखी, बाबा ने देखा ये आत्मा मेरा ही बच्चा है। वो तो माया के राज में उन वो परिवर्तन हो गया, अब जब मेरा बच्चा मेरे पास आ गया है तो मेरी शक्ति से मैं उसको अपनी शक्ति दूं, और वो शक्तिशाली बन करके फिर से इतना ऊंच बन जाए। बाबा ने उनके अवगुणों को नहीं देखा, बाबा ने उसकी कमजोरी को नहीं देखा, बल्कि बाबा ने ये भी नहीं पूछा तुम कौन थे, बस बाप के पास आए, बाप की नजर आत्मा पर। ये बाबा हम बच्चों को अभ्यास कराते हैं, इसलिए ये बड़ी सहज विधि है। जो बाप के विचार, जो बाप की शिक्षा, उस शिक्षा को हम बार बार स्मृति में ला करके स्वयं को ऐसा स्वरूप बनाएं, क्योंकि इसमें फायदा हमारा ही है। अगर हम शुभ चिंतक भावनाएं रखते हैं तो हमारी किससे भी दुश्मनी नहीं होगी। अगर मेरी किससे दुश्मनी नहीं है तो मेरा भी कोई दुश्मन नहीं बनेगा, और अगर मेरा कोई दुश्मन नहीं बनेगा तो सब मेरे मित्र हैं। मित्रों का आपस में स्नेह का व्यवहार होता है, और स्नेह का व्यवहार एक तरफ सुखदाई और साथ साथ एक दो के सहयोगी बन जाते हैं। और जब मेरी ऐसी भावनाएं हैं सर्व के प्रति, बड़ी बात, तो मेरे आत्मा के अंदर इम्प्यूरिटी के संस्कार नहीं भरेंगे, द्वेष भावना के संस्कार पैदा ही नहीं होंगे। इतने सब फायदे हैं शुभ भावनाएं रखने की। जब इतना फायदा है तो फिर हम ऐसी भावनाएं क्यों ना अपने में जागृत करें। ऐसे हम स्वयं स्वयं से बातें करें, शुभ भावनाओं को अपनाना, यह स्मृति रखना कि बाप की हम सबके प्रति कितनी भावनाएं, कितनी शुभ भावनाएं हैं। दूसरे रूप में कहा जाएगा, ये स्मृति स्वरूप बनना है। बाप की याद से हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। यह सर्व के प्रति शुभ भावना हमारी दृष्टि में रूहानियत, आत्मक स्नेह सर्व के प्रति बन जाए और उस आत्मक स्नेह से हम एक दो से मधुरता से सरलता से बातें करें, तो यह दैवी गुण हमारे कर्मों में आने लग जाएगा। अर्थात हमारे कर्म भी ये सिद्ध करेंगे कि बरोबर हमें सर्व के प्रति शुभ भावनाएं हैं। और उससे बड़ी बात कि आत्मा, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, तो पवित्र बनने में, पावन बनने में ये हमको मदद मिलती जाएंगी। क्योंकि जैसी भावनाएं, कहा जाता है जैसी वृत्ति ऐसी दृष्टि, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। तो अगर वृत्ति में हमारी शुभ भावनाएं हैं तो दृष्टि हमारी शुद्ध रूहानियत संपन्न होंगी, और दृष्टि हमारी शुद्ध बन जाती तो हमारे लिए सारी सृष्टि अर्थात यह ईश्वरी परिवार हमें शुद्ध नजर आता रहेगा। किसका भी अवगुण हम अपने चित्त पर रख नहीं सकेंगे, बल्कि देखेंगे ही नहीं। अगर अवगुण न देखने आया, न वर्णन किया, तो हमारे अंदर भी गुणों का स्टॉक बढ़ता जाएगा। तो देखो, एक शुभ भावना रखने से, बाप की शिक्षा को पालन करने से, बाप की मिली हुई मत पर स्वयं को चलाने से कितने सब फायदे हमें अपने लिए भी मिलते जाते हैं। ऐसे ऐसे शुभ चिंतन हम अपने मन के अंदर जागृत करते जाएं। हम याद करें कि बाप की हम बच्चों में कितनी बड़ी उम्मीदें हैं। हम कहते हैं ना, बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं। बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे जो विश्व के मालिक थे फिर से ऐसे बने, पर जब विश्व के मालिक थे तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तो हमें पहले अपने को संपूर्ण निर्विकारी सर्वदैवी गुण संपन्न बनाना है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक किनारे बैठ के अपने को बनाएंगे, दैवी गुण संपन्न अथवा गुण संपन्न व्यवहार, गुण संपन्न कर्म। जितना हमारा कर्म दिव्यता संपन्न होगा, दैवी गुण संपन्न होगा, वो कर्म हमारा श्रेष्ठ माना जाएगा। और उस श्रेष्ठ कर्मों से हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाए, बनते जाएंगे। संस्कार दिव्य बनते जाएंगे और वो दिव्य संस्कार अपने आप पुराने संस्कारों को मर्ज खत्म करते जाएंगे। तो हम अगर सोचे हमारे में ये पुराना संस्कार है, वो तो हर एक को अपना पता है, उसका हम चिंतन न करें। हमें चिंतन करना है श्रेष्ठ संस्कारों का, दिव्य संस्कारों का, देवताई जीवन का। देवताओं की चलन कैसी, देवताओं का चेहरा कैसा, देवताओं का व्यवहार कैसा, वे बातें हम अपने अंदर स्मृति में लाते लाते हमारे जीवन के कर्मों में, कर्म इंद्रियों से ऐसे श्रेष्ठ कर्म होता रहे, तब हम जितने जितने श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे उतना ही देवताओं में भी ऊंच पद प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो ऊंच पद तो छोड़ो। और ये क्या बाबा कहता है, क्योंकि जानते हुए समझते हुए, और अगर हम फिर भी नहीं करते हैं तो बाप क्या कहेगा। इसलिए सदा हमें याद रहे हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। हमें अपनी चलन, हमें अपना चेहरा ऐसा दिखाना है जिस चेहरे से दिव्यता झलकती हो। हमारी चलन में श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति नजर आए, तब हमारे ये सारा मदार स्मृति पर ही है। जितनी जितनी हमें स्मृति रहेंगी, कौन सी स्मृति, एक तरफ बाप की स्मृति और साथ साथ बाप के शिक्षाओं की स्मृति, क्योंकि शिक्षाएं बाप हमें विस्तार से समझाते हैं। हम देवता कैसे बन सकते हैं वो बाबा ने हमें पूरे विस्तार से समझा दिया है। उस विस्तार को हम अपने मन के अंदर दोहराते रहें और वो विस्तार जितना जितना स्मृति में आता जाएगा, वह स्मृति हमें खुशी देंगी। और जब हम खुशी में हैं तो पुरानापन छूट जाता है। जो बात हमें पसंद है वो ही हम अपने कर्मों से करते रहेंगे। इन सब बातों को आप सब समझदार है, समझे हुए हैं, सुने हुए हैं, और खुद भी चाहते हैं, नहीं बाबा जो कहता है वो सत्य है और वो मुझे करना ही है। परंतु जब करने का मौका आता है तो उस समय पूरा ध्यान न देने के कारण वह स्मृति हल्की हो जाती है। और जो बीता वो ही फिर हम अपने कर्मों में लाते हैं। इसलिए हमें याद रहे ये हमारा ध्वज ब्राह्मण जन्म है, मर जीवा जन्म है। भगवान को केवल जाना और पहचाना है ऐसा नहीं, परंतु हमने भगवान के पास नया जन्म लिया है। जब हमारा ये नया जन्म हो चुका तो पुरानी जीवन को हम क्यों याद करें? ये अपने आप अपने को समझाना है, अपने से बातें करनी है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना, दुनिया में जो भी कुछ नई इन्वेंशन होती है तो कितनी फास्ट प्रगति को पाती है। तो अब हमें अपनी गति को फास्ट करना है। बाबा कहते हैं अभी समय बड़ा कम है। भल आप कहेंगे ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कभी तो अंत होगा। और वो अंत की निशानी पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। देखो अब दुनिया वाले हमारी बातें सुनते हैं तो उनको अच्छी लगती है, वो आना भी चाहते हैं। अब उनको चाहिए जब वो हमें हमारी चलन ऐसी देखते हैं तो उनको विश्वास आता है। अपने आप इतना जल्दी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में बताते हैं कई वर्षों तक तपस्या करते रहे तो मस मस भगवान राजी होता है। परंतु बाबा देखो राजी होने की कितनी सहज बात बताते हैं। याद है कल की मुरली में, हाँ, सच्ची दिल पर सच्चा साहिब राजी। भले कोई भूल की हो, कुछ भी हो, पर साफ दिल, सच्ची दिल, उसमें थोड़ी भी हेरा फेरी नहीं, उसमें दे अभिमान वश कुछ छिपाएं कुछ बताएं ऐसा नहीं। ये समझ के बाबा तो बख्शनहार, क्षम्या का सागर गाया हुआ है। अगर कोई बच्चा अपनी भूल खुद आके बताता है तो बाबा कहते हैं बाप तो तुम्हारा बड़ा रहम दिल है। तो रहम भावना संपन्न बाप की दृष्टि जब उस पर पड़ती है और वो बड़े भोलेपन से जो जैसी बात है जिस प्रकार से भूल हुई है अपनी सच्ची सच्ची बता देता है निर्संकल्पता से, तो बाप के आशीर्वाद की दृष्टि, बाप के प्यार की नजर, वह उनको आशीर्वाद के समान लग जाती है। और अगर यथारथ रीति से स्वयं महसूस करके और अपनी भूल बाबा को बताई है तो फिर से वह भूल करने से बच जाते हैं। बल्कि जो अंदर में दिल खाती रहती है वो भी क्लियर हो जाती, फिर दिल नहीं खाएंगी, क्योंकि जो बात जैसी थी हमने बाबा को बता दी और फिर बाबा ने जो डायरेक्शन दिया उस प्रमाण अमल किया, ये बात भी साथ में है। क्योंकि बाप की फिर बड़ी रहम की दृष्टि उस बच्चे पर पड़ती है। इसलिए सदा ये याद रहे कि ये हमारा ईश्वरी परिवार है, ईश्वर पिता ने आकर के ये नई रचना की शुरुआत की है, कलम लगाया है। जब कलम लगता है तो कितनी संभाल करनी पड़ती है, समय से पानी देना, धूप छांव से बचा के रखना, जिस समय छांव चाहिए जिस समय धूप चाहिए, कितना उसकी संभाल करते हैं जब नया बीज डालते हैं या नया कलम लगाते हैं। आप लोग जानते होंगे, देखा होगा। तो बाबा ने आज भी मुरली में कहा, वो है जड़ और ये है चेतन। तो ये चेतन मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, जिसमें हम आत्माएं और हम आत्माओं का ये जीवन रूपी झाड़, उस झाड़ को हमें कैसे संभाल से, अभी ये नई रचना का बीज, राजयोग की शिक्षा, नॉलेज, ईश्वरी परिवार, ये हमारा विश्वास और ये प्रैक्टिकल संगठन, ऐसी ऐसी बातें हम सदा अपने स्मृति में रखें, तो हमारी सर्व के प्रति शुभ भावनाएं बनी रहेंगी। बाबा कहते हैं, बच्चे सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखो, यही हमारी सच्ची सेवा है। कल्याण की भावना से हम उसको बाप की बातें फिर सुनाते समझाते रहेंगे। हमें ये नहीं आएगा, ये क्या करता है, ये तो समझता ही नहीं है। नहीं, हर एक की बुद्धि अपनी है, हर एक की धारणा शक्ति अपनी अपनी है, हर एक अपनी अनुकूलता अनुसार अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। परंतु जब मैं बाप का बच्चा हूँ, मुझे भी अपनी शुभ भावनाओं से हर एक को सहयोग देना है। तो स्नेहमयी दृष्टि, रूहान्यत संपन्न दृष्टि और मधुरता के, सरलता के बोल, सरलता का व्यवहार और बोल में मधुरता, इस प्रकार का हम सहयोग आपस में ब्राह्मण परिवार सबको देते रहें। आज के वरदान में था ना, लड़ाई ब्राह्मण परिवार से नहीं करनी है, परंतु माया से लड़ाई करनी है। और वो भी कल के मुरली में था कि लड़ाई समय दुश्मन समझ के लड़ाई नहीं करो माया से, परंतु उसको मनोरंजन का खेल समझ के खेलो। है याद मिकी माउस का खेल, खेल के अंदर कैसे कैसे कार्टून आते हैं। तो जो भी माया अपना रूप दिखाए, कभी किस रूप में कभी किस रूप में, समझो ये माया अपना खेल कर रही है, मनोरंजन कर रही है। साक्षी होकर के उसको देखो, उसके अनुकूल पार्ट नहीं बजाओ। उस समय हमें याद रहे, हम तो सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे, ये हम खेल देख रहे हैं। इस समय जो माया का राज्य है, माया अपना खेल दिखा रही है। खेल समझने से हम साक्षी रहेंगे, साक्षी समझने से हम खेल को देखते हर्षित होते रहेंगे। जब हर्षित है, खुशी है, तो खुशी के अंदर कोई पाप आ नहीं सकता है, क्योंकि पाप खुशी को गुम कर देगा, नेगेटिव विचार खुशी को गुम कर देंगे, दूसरे के प्रति अवगुण की दृष्टि अपनी खुशी गुम करेगा। इसलिए सर्व के प्रति सदा शुभ भावनाएं और मन के अंदर सदा शुद्ध चिंतन, ज्ञान का चिंतन, बाबा जो जो बातें बताते हैं बड़ी रमणीकता से अपने आप से रोरियार करना, अपने आप से कॉन्वर्सेशन करना, संवाद करना, ये करने से क्या फायदा है, कैसे कैसे फायदा होता है, बाप हमको कितना भाग्य दे रहा है। ऐसे भाग्य विधाता बाप, भाग्य विधाता मेरा बाप है। तो जब बाप भाग्य विधाता है तो उससे प्राप्त किया हुआ भाग्य मैं भी फिर औरों को बांटता रहूं, ऐसा महादानी बन जाऊं, ऐसा महादान जिससे फिर अपना भाग्य ऊंचा हो जाता है। इसलिए हमें सदा याद रहे, भाग्य विधाता मेरा बाप है और बाप के साथ ये बाप वो बाप है। कहा जाता है सत्य ही भगवान है। जब मेरा बाप स्वयं सत्य स्वरूप है, मैं उसका बच्चा भी सत्य स्वरूप बना रहूं। इसलिए हमें अपने कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराते रहना है, अर्थात दैवी गुण संपन्न कर्म करना है, जिससे हमारे संस्कार दिव्य और श्रेष्ठ बनते जाएंगे। जिन दिव्य संस्कारों से हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म हमारा श्रेष्ठ माना जाएगा। जिन श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर हमारा पद भी ऊंच बन जाएगा, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा बाप हमें भी ऊंचे ते ऊंच पूज देव बनाना चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि हाँ, हम ऐसा बनकर बाप की आशाओं को पूर्ण करें। सदा अपने मन के अंदर ऐसी दृढ़ता संपन्न संवाद करते रहें, सदा अपने को ऐसी स्मृति दिलाते रहें। जितना हम स्वयं स्वयं को स्मृति दिलाएंगे तो सहज भाव से हम एक रस स्थिति अपनी बना पाएंगे। कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, कौन सी बाप तुम्हें वर्षा करते हैं, हाँ गोल्डन वर्षा कौन सी, अविनाशी वरदानों की, अविनाशी भव अमर भव अचल अडोल भव, ऐसे ऐसे बाबा के महावाक्य, बाबा के वरदान हम अपने, उस समय तो हम बड़े खुश होते हैं जब सुनते हैं, लेकिन वह खुशी हमारे पास कायम रहे, उन वरदानों को हम बार बार स्मरण करते रहें। बार बार स्मरण करने से वो वरदान हमारे स्वरूप में आ जाएगा, अर्थात हमारे कर्मों में प्रत्यक्ष स्वरूप हमें दिखाता रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध स्मृति है, शुद्ध स्मृति की शक्ति हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बना देती है। शुद्ध स्मृति की शक्ति हमारे संकल्प श्रेष्ठ और समर्थ कर देती है। वह समर्थ संकल्प हमें कर्म करने में मदद करते हैं और वह कर्मों में मिला हुआ सहयोग हमें सफलता स्वरूप बनाता है। इसलिए बाबा का वरदान है हम बच्चों को, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे हम बाप के अधिकारी बच्चे, सदा बाप का दिया हुआ अधिकार याद रखते हुए स्वयं को ऐसे अधिकार के पात्र बनाते जाएं। जितना हम अधिकार के पात्र बनेंगे तो अधिकार आपे ही सहज भाव से आपको मिलता रहेगा, और उस अधिकार से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे समय कम है और पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनाने की आवश्यकता है। हम अपने विचारों को देखें, हमारे विचारों में कोई नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। सदा शुद्ध संकल्प, एक दो के प्रति शुभ भावनाएं, कर्मों में दैवी गुणों की धारणा नजर आए, हमें याद रहे हम बाप की पहली पहली नई रचना है, सारी नई दुनिया का मदार हमारे ऊपर है, हम फाउंडेशन है। फाउंडेशन कितना मजबूत, कितना ध्यान से उसको फाउंडेशन को सींचा जाता है। इसलिए बाबा भी हम बच्चों पर इतना ही ध्यान रख रहे हैं और हमें हर कदम के लिए शिक्षा और मार्गदर्शन देते रहते हैं। उन शिक्षाओं को सदा स्मृति में रखकर मिले हुए मार्गदर्शन पर अपन को चलाते रहें। हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति को पाता जाएगा और हम बाप की आशाओं को पूर्ण करने के लिए समर्थ रहेंगे। ओम शांति।
अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। शुचिता के संकल्प लाओ, डर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे, योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की भटकती ये नैया, पार होगी तपस्या के बल से। जिंदगी की भटकती ये नैया, पार होगी तपस्या के बल से। सब मुश्किलें पार कर दो, अपनी रूहानी ताकत के बल से। अपनी रूहानी ताकत के बल से, शिव पिता ही है अपना सहारा। उनके यादों में सुख पाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा, कर तपस्या करो याद शिव को। दिल को आराम मिल जाएगा, अपने चिंतन की धारा बदल दो।